जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद चैतन्य भागवत मध्यखंड द्वितीय अध्याय पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले क्लास में सुना था कि किस प्रकार से निमाय पंडित अपना जो ये पढ़ने का और पढ़ाने का जो कार्यकलाप है वो त्याग देते हैं और आपने जितने भी विद्यार्थी थे उन्हें ये सिखाते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। तो वहाँ निमाय पंडित अपने स्वयं के आचरण से उनको सिखाते हैं और कि हाथों से ताली बजाते हुए कृष्ण के नामों का कीर्तन करना चाहिए। तो उन शिष्यों ने पूछा कि किस नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार से कृष्ण के नामों का कीर्तन करो। और उन्होंने फिर बाकी जो पढ़ाने की जो उनका एक प्रकार का व्यवसाय है उसको त्याग दिया और उन्होंने कहा कि मैं बस अभी केवल कृष्ण के नाम गुण रूप लीलाओं में मग्न रहूंगा, क्योंकि मेरे मुख से कुछ और चीज पूरित नहीं हो रही है, निकल नहीं रही है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। वो बेचारे विद्यार्थी बहुत रोने लगे। उन्होंने कहा हमने जितना अभी आपसे पढ़ा है उससे आगे हम और किसी से नहीं पढ़ेंगे, इतना ही हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जब निमाय पंडित पूरी तरह से वैष्णव हो गए थे और पूरे नवद्वीप में कई सारे लोगों को इस बात का पता चला, तो वो कई सारे जो वैष्णव गण हैं वो अद्वैत आचार्य के पास जाते हैं और अद्वैत आचार्य उस समय पूजा कर रहे थे। तो अद्वैत आचार्य के पास जाकर जो जो चीजें घटित हो रही थी, निमाय पंडित में जो परिवर्तन आ रहा था उसके बारे में बताने लगे। तो फिर अद्वैत आचार्य को ये पता चल गया था और उनको सपने में भी विश्वंबर आए थे जो साक्षात कृष्ण है, ये उन्होंने जान लिया था। और फिर सारे वैष्णवगण उनको ये निमाय पंडित का ये इन्फॉर्मेशन देकर चले जाते हैं और फिर अद्वैत आचार्य बहुत अधिक आनंदित होते हैं इस बात को सुनकर और सबको आशीर्वाद देते हैं कि तथास्तु। और फिर सारे वैष्णव जाते हैं और अद्वैत आचार्य अपने कार्यों में लगते हैं। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण अनुग्रह हो कसबारे कृष्ण नामे मत्त हो सकल संसारे। तो अद्वैत आचार्य कहने लगे कि श्री कृष्ण का अनुग्रह सबके ऊपर हो जाए और सारे संसार के लोग कृष्ण नाम में मत्त हो जाए, पागल हो जाए। यदि सत्य वस्तु हय तबे यही खाने सबे आसी बेन यही वामनारस्ताने। तो उन्होंने कहा ये वस्तु यदि सही है या सत्य है तो सारे जो लोग हैं इस ब्राह्मण के घर आएंगे, मीन्स मेरे घर आएंगे। अद्वैत आचार्य ने कहा आनंदे अद्वैत करे परम अहंकार सकल वैष्णव करे जय जयकार। तो बहुत अधिक आनंदित होकर अद्वैत आचार्य ने गर्जना की और सारे भक्तगण जय जयकार करने लगे। हरि हरि बलिडा के वदन सवार उठिल कीर्तन रूप कृष्ण अवतार। तो सब लोग हरि हरि का उच्चारण करने लगे थे, जोर जोर से जोर जोर से बोल रहे थे और ऐसे लग रहा था कि कीर्तन के रूप में या कृष्ण नाम के रूप में साक्षात कृष्ण ही अवतरित हो गए हैं। यह भले निमाय पंडित भल है ले। तो कोई कहने लगा कि निमाय पंडित अभी बहुत अच्छा हो गया है। तबे संकीर्तन करे महाकुतूहल है, तो फिर वो कहने लगे कि अभी निमाय पंडित तो अपना जो ये उद्धट स्वभाव है उसको त्याग दिया है और अभी भक्त बन गया है, तो निमाय पंडित के साथ हम सब बहुत आनंद से कीर्तन करेंगे महाकुतूहले। आचार्य प्रणति करिया भक्तगण, आनंदे चलीला करे हरि संकीर्तन। तो अद्वैत आचार्य को प्रणाम करके कुछ भक्त चले गए हरि नाम संकीर्तन करने के बाद। प्रभु संगे जाहर जाहर देखा है, परम आदर करे सबे संभाषाय। अभी निमाय पंडित कुछ दिनों के बाद उनमें ऐसा परिवर्तन आने लगा कि जब कोई भी वैष्णव नवद्वीप में उनको मिलता था तो उनका बात करने का जो शैली था वो टोटली चेंज हो गया था। तो जैसे ही जो जो वैष्णव उनको मिलता था, जो जो वैष्णव निमाय पंडित को देखता था, तो बहुत आदर के साथ बहुत अधिक विनम्रता से वो उनसे बात करते थे। प्रातः काले जबे प्रभु चले गंगा स्नाने, वैष्णव सबार संगे हय दर्शने। तो जब सुबह के समय निमाय पंडित गंगा स्नान करने के लिए चलते थे तो उस समय उनको कई सारे वैष्णवों का दर्शन होता था। श्रीवास्तादि देखिले ठाकुर नमस्करे, प्रीत हया भक्तगण आशीर्वाद करे। तो श्रीवास और कई सारे भक्तगण जब उनको दिखाई देते थे तो निमाय पंडित प्रसन्न होकर उनको प्रणाम करते थे या नमस्कार करते थे और वो सारे भक्त उनको आश्रय थे। तो वो आशीर्वाद क्या देते थे, तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, तुम्हारा हव का भक्ति कृष्ण रचरणे, मुखे कृष्ण बल कृष्ण सुना श्रवणे। कहते कि तुम्हारा जो भक्ति है वो कृष्ण के चरणों के प्रति उत्पन्न हो जाए और तुम्हारे मुख में कृष्ण और तुम्हारे कान में भी कृष्ण होना चाहिए ना हो जाए। कृष्ण भजिले सेवा प सब सत्य है, कृष्ण ना भजिले रूप विद्या की छुनाए। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण का भजन करने ही सत्य है इस जीवन में, और कृष्ण ना भजिले, कृष्ण का भजन नहीं करेंगे रूप विद्या की छुनाए। जैसे महारानी कुंती कहते हैं, क्या कहती है, चार चीजें, हाँ, जन्म ऐश्वर्य श्रुत स्त्री यद मान मद अपमान। तो कृष्ण का भजन नहीं करेंगे चाहे बड़े कुल में जन्म क्यों ना हो, बहुत अधिक ऐश्वर्य क्यों ना हो, या फिर सौंदर्य क्यों ना हो, या बहुत अधिक ज्ञान क्यों ना हो, उसका कोई लाभ नहीं है। कृष्ण से जगत पिता कृष्ण से जीवन, दृढ़ करे भज बाप कृष्ण रचरण। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ही पिता हैं और कृष्ण ही हम सबके जीवन है, इसलिए हे निमाय तुम दृढ़ता के साथ कृष्ण के चरणों का भजन करो। आशीर्वाद सुनिया प्रभु र बड़ा सुख, सबारे चाहे न प्रभु तुले आश्री मुख। तो इस प्रकार से भक्तों का आशीर्वाद सुनकर जो निमाय पंडित है अपना जो मुंह उठाकर उन भक्तों की ओर देखा करते थे। तुम्हारा से कह सत्य करे आशीर्वाद, तुम्हारा वा कहने आना करे बा प्रसाद। तो निमाय पंडित कहने लगे कि आप लोग सच्चा आशीर्वाद देते हैं और आप लोग कृष्ण की कृपा के अलावा दूसरी कोई कृपा नहीं कर सकते, मतलब वैष्णवगण केवल कृष्ण की कृपा ही देते हैं उनके आशीर्वाद में भी। तुम्हारा से पार कृष्ण भजन दिवारे, दासेरे से विले कृष्ण अनुग्रह करे। तो उन्होंने कहा निमाय पंडित का भी सबसे पहले जो उनका फेथ है, जो उनका रिस्पेक्ट है, वो सबसे पहले भक्तों के प्रति वैष्णवों के प्रति बढ़ रहा है। तो इतना बढ़ रहा है, इतनी भक्तों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो निमाय पंडित कहते हैं कि हे वैष्णवगण, आप कृष्ण का भजन देने में समर्थ हैं और दासेरे सेविले कृष्ण अनुग्रह करें। देखो एक सेंटेंस में कितना बड़ा ये है, दासेरे सेविले मतलब भगवान के दासों की सेवा करोगे तो कृष्ण अनुग्रह करें, तो कृष्ण कृपा करेंगे। हम रोज इसलिए गाते यश प्रसादात भगवत प्रसादो, तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो कृष्ण की जो कृपा है वो उस भक्त के लिए बहुत सरल हो जाती है। तो पूरे इस एपिसोड में चैतन्य महाप्रभु बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए जो कृष्ण भावना में आगे बढ़ना चाहता है। तो महाराज हमारे सिखाओ विष्णु धर्म, ते बुझी अमर उत्तम अच्छे कर्मा। तो वो कहने लगे कि आप लोग जो मुझे विष्णु धर्म की शिक्षा दे रहे हैं तो उससे मैं समझता हूँ कि मेरे ये पूर्व कर्मों के कारण ही है। जैसे किसी को बहुत अच्छा साधु संत प्राप्त होता है, या किसी महान वैष्णव का एसोसिएशन या किसी महान वैष्णव का गाइडेंस मिलता है, तो ये क्या है एक प्रकार से कि उसके पूर्व के कुछ ऐसे विशेष कर्म है जिसके कारण उसे ऐसा संग प्राप्त हुआ है। तो महाप्रभु कहते हैं कि आप सब वैष्णव मुझे कृष्ण भक्ति की शिक्षा दे रहे हो, तो ये क्या है कि मेरे पूर्व जन्म में मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण ये मुझे फल है कि आप जैसे वैष्णव का मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है। तो मसवा से विले से कृष्ण भक्ति पाए, मतलब आप सबको सेवा करने से कृष्ण भक्ति पाए। एतबली कारो पाए धरे से ठाए, तो ये कहकर निमाय पंडित किसी किसी के चरण पकड़ने लगते थे। निवाडये वस्त्र कारो करु या जतने, धुती वस्त्र तुलिकारो देनत आपने। तो कभी कभी जो निमाय पंडित वैष्णव के जो कपड़े धोने आते थे नदी में, तो गीले कपड़े निचोड़ दिया करते थे, और कभी कभी उनके धोती को लेकर सुखाने के लिए डालते थे। तो अभी उनके हृदय में ये बात बहुत आगे अधिक प्रभाव डाल गई है कि दाते रहे सेविले कृष्ण अनुग्रह पाए, कि दासों की सेवा करने से कृष्ण का अनुग्रह हो जाएगा, या तोमा सवा सेविले से कृष्ण भक्ति पाए, कि आपकी सेवा करने से कृष्ण भक्ति मिलेगी। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि आपको यदि किसी लड़की से प्रेम करना है तो उसके कुत्ते से प्रेम करना पड़ेगा। और चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितामृत में इस बात को बहुत अधिक जोर दिया गया है, जो वैष्णव सेवा का जो सिद्धांत स्थापित किया है। तो वृंदावन दास ठाकुर ने भी इस महाप्रभु की शिक्षा को बहुत अधिक प्रकट किया है, और कृष्णदास कविराज ने भी। पुष गंगा मृतिका का हारो देना करे, साजी बही को नदी न चले कारो घरे। तो फिर किसी के हाथ में जो कुश ध्यान लगाने के लिए या गायत्री करने के लिए जो आसन हुआ करता था वो दिया करते थे निमाय पंडित, या फिर किसी को गंगा की मिट्टी चाहिए किसी सेवा के लिए तो मिट्टी निकाल के उनको दे देते थे। और किसी किसी दिन जो पूजा की टोकरी है या फूलों की टोकरी या पूजा का जो सामान का टोकरी है वो निमाय पंडित उस वैष्णव का उठाते थे और उसके घर तक जाते थे पहुंचाने के लिए। सकल वैष्णव गण हाय हाय करे, की कर तब करे विश्वम्बरे। तो जो सारे वैष्णव हैं वो हाय हाय करने लगते थे और कहते थे कि ये क्या कर रहे हो हे विश्वम्बर, हाँ तुम क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार से एक प्रकार से उनसे डर रहे थे निमाय पंडित से। यही मत प्रतिदिन प्रभु विश्वम्बर, आपन दासे रहय आपने किंकर। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि निमाय पंडित में अभी इतना परिवर्तन आ गया था कि वो अपने जो साक्षात प्रभु हैं या वो जो साक्षात कृष्ण हैं वो अपने दासों के भी दास बन रहे हैं या सेवक बन रहे हैं। कौन कर्म सेवकेर प्रभु नाही करे, सेवकेर लागिने जा धर्म परिहरे। तो कहते कि कौन सा ऐसा कार्य है, कौन कर्म सेवक के लिए, मतलब कौन सा ऐसा कार्य है जो कृष्ण अपने सेवक के लिए नहीं करते हैं। हम तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सेवक के लागे निज धर्म परिहरे, और सेवक के लिए अपना धर्म या अपने वचन को भी तोड़ देते हैं। अब देखो वर्णन आता है कृष्णा बुक में, हम पढ़ते हैं कि नंदा महाराज कहा करते थे कि हे कृष्ण, या यशोदा कहते थे हे कृष्ण तुम्हारे पिताजी के खड़ाव ले आओ। तो कृष्ण खड़ाव सर के ऊपर इतना आनंद, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अद्भुत चीज उन्होंने धारण की है और बड़े आनंद के साथ ऐसे छोटे से बालक जा रहे हैं। ऐसे कितने सारे लीलाओं से भगवान ये शिक्षा देते हैं। और जैसे अर्जुन की बात हम सोचते हैं तो ये गीता का सार है कि अर्जुन के सारथी बनते हैं कृष्ण, और जब बहुत तूफान भयानक युद्ध चल रहा होता है तो अर्जुन को बहुत दिक्कत होती थी बताने के लिए कि लेफ्ट जाना या राइट जाना है। तो अर्जुन कृष्ण को पांव से किक मारता था, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट साइड में मार देता था किक, राइट जाना है तो राइट साइड में मार देता था। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि क्या कार्य नहीं किया, हाँ भगवान ने क्या नहीं किया कृष्ण के लिए। हाँ तो इस प्रकार से भक्त सोचता है, भगवान और भक्त के बीच का ये जो सेवा का आदान प्रदान है, और भक्त आनंदित हो जाता है और वो भी दृढ़ता लाता है अपने भक्ति में कि नहीं कृष्ण मेरे रक्षक हैं। सकल सुरत कृष्ण सर्व शास्त्र कहे, जतेक कृष्ण रखे है द्वेषोपेक्षण है। तो सारे शास्त्रों का कहना है कि कृष्ण सारे जीवों के सुहृद हैं, लेकिन और कृष्ण किसी से द्वेष भी नहीं करते ना किसी की उपेक्षा करते हैं। तो भगवद गीता में कौन सा श्लोक है, 9वें अध्याय का, ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु शाप्यहम्, कि ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ ना कोई मुझे प्रिय है, लेकिन जो मेरा मां भजन की मां भक्तिया जो मेरा भजन करता है वो विशेष है। ताहो परिहरे कृष्ण भक्तिर कारणे, तार साक्षी दुर्योधन वंश रमरने। तो कहते लेकिन जो भक्त भगवान की उपासना करता है, उनकी सेवा में लगता है, तो उनके लिए फिर क्या करते हैं इस समदृष्टि का, मुझे सब लोग समान है, उसको कृष्ण त्याग कर देते हैं, अपने वचन को तोड़ देते हैं। कहते इसका उदाहरण है दुर्योधन अपने वंश के साथ मर गया। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कृष्ण कर सेवा भक्ति रस भाव, भक्त लागी कृष्ण रस कल अनुभाव। तो कहते कि भक्त का स्वभाव होता है कृष्ण की सेवा करना, और कृष्ण का स्वभाव क्या है भक्तों की सेवा करना। तो कृष्ण हर समय मौका ढूंढते हैं सेवा करने का। जैसे जब माधवेंद्रपुरी गोवर्धन आए तभी भी उनके लिए दूध लेके पहुंचे, और जब वो रेमुना चले गए उन्होंने जैसे ही, क्योंकि माधवेंद्रपुरी ने क्या इच्छा की थी कि मेरे गोपाल वृंदावन में है, और मुझे मैंने सुना है कि यहाँ बहुत क्या क्या भोग लागे, हाँ कहते क्या क्या भोग लगता है यहाँ। तो किसी ने कहा यहाँ तो एक बहुत विशेष खीर होती है अमृत के लिए, तो कहते मुझे ये मिल जाए तो मैं जब वृंदावन जाऊंगा तो मेरे गोपाल के लिए भी वैसे ही बनाऊंगा। तो मतलब इनका सेवा की भावना, तो जैसे इनकी भी सेवा की भावना तो वहां भगवान की भी सेवा की भावना, कॉम्पिटिशन। उन्होंने कहा तुमने इच्छा की है ठीक है, अभी मैं चोरी कर लेता हूँ। हाँ तो इतना कॉम्पिटिशन है आपस में सेवा का इन दोनों का। कृष्ण र बेचिते पारे भक्त भक्ति रसे, तार साक्षी सत्य भामा द्वारका निवासे। तो आप देखोगे वृंदावन दास ठाकुर किसी चीज को प्रकट कर रहे हैं तो साथ साथ कितनी अमूल्य शिक्षाएं प्रदान करते जा रहे हैं और सिद्धांत को भी स्थापित करते जा रहे हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वेद व्यास ने जितने सिद्धांत कृष्ण भक्ति के लिए आवश्यक है उन सबका वर्णन श्रीमद भागवतम में किया है। उन्हीं भक्ति सिद्धांतों को वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में प्रकट किया है। तो कहते उदाहरण देते हैं कृष्ण रे बेचिते पारे भक्त भक्ति रसे, कि कृष्ण को जो भगवान का भक्त है भक्ति रस के कारण उनको बेच सकता है या बेच देता है। उसका उदाहरण क्या है, तार साक्षी सत्य भामा द्वारका निवासे, उसकी साक्षी है सत्य भामा जो द्वारका में निवास करती है। तो इसका वर्णन करते हैं आचार्यगण, ये स्टोरी आती है हरिवंश पुराण में। तो जब कृष्ण गए थे स्वर्गा में और उनको पारिजात एक फूल उनको मिला तो उन्होंने रुक्मिणी को दिया शायद। तो ये सत्यभामा को बहुत कष्ट महसूस हुआ। तो सत्यभामा थोड़ी ऑर्डर देने वाली पर्सनैलिटी है और रुक्मिणी लेफ्ट विंग एक एक क्या कहते हैं वामांगी और दूसरा है लेफ्ट राइट ऐसे कुछ है। तो राधा रानी को वामांगी कहा जाता है, जो बहुत थोड़े प्रश्न कुछ करे तो उनको धड़ा सिखा सकती है, मान प्रकट करेगी, क्लास लगाएगी। लेकिन रुक्मिणी का स्वभाव ऐसे नहीं है, रुक्मिणी को कृष्ण डांट भी देंगे तो वो सहन करके मूर्छित हो जाएगी। लेकिन सत्यभामा बिल्कुल अलग है, कड़क स्वभाव की है, मतलब कृष्ण मेरे हैं, मेरे ही है केवल, किसी और के नहीं, ये भावना है उसकी। तो जब सत्यभामा ने देखा उसके लिए तो वो फूल ले आए पारिजात, एक फूल पूरे सब जगह सुगंध फैला देता है जो स्वर्ग में अवेलेबल है। पूरे इतना अद्भुत होता है पूरे पृथ्वी में पारिजात। तो जब कृष्ण ने देखा ऐसे हो रहा है तो कृष्ण ले गए सत्यभामा को और फिर उनसे पारिजात फूल ही नहीं पूरा पेड़ लेके आए और इतना युद्ध उसके लिए। देखो तो पत्नी के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, गृहस्थ आश्रम में भगवान ने भी शिक्षा दी। तो फिर ले आए तो ले आए, मतलब ये सिखाया था उनको कि नारद जी ने कुछ उनको ट्रेनिंग दिया था कि मेरी इच्छा को आप पूर्ति करो, ये मुझे चाहिए इस प्रकार से। तो नारद जी ने कुछ युक्ति बताई थी जिसके कारण कृष्ण को वो वृक्ष लाना ही पड़ा। तो फिर नारद एक दिन द्वारका में आए, क्योंकि नारद का वर्णन आता है आप पढ़ेंगे दशम स्कंद में, तो वहां वर्णन आता है कि नारद को सबसे ज्यादा बहाने बनाते थे वृंदावन या द्वारका जाने के लिए, जैसे भक्त लोग बहाने बना के जाते हैं। तो हर समय कुछ ना कुछ बहाने बनाते थे कि कभी ये करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं, तो जाते थे और वहां रहते थे। क्योंकि उनको जो प्रजापति ने शाप दिया था दक्ष ने कि आप एक स्थान में नहीं रह सकते, तो वो पृथ्वी में वो सब जगह वो शाप काम करता था। लेकिन जैसे धाम में जाते थे वृंदावन या मथुरा या द्वारका, तो वहां वो शाप काम नहीं करता था। और ऐसे नहीं कि वो जाके वो एसी रूम बुक करके वहां रह जाते थे या पहले बोल देते थे प्रसाद की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और वो नहीं, वो तो महान ऋषि हैं, उनको रहना ही धाम में बहुत अच्छा लगता था। तो वो जाते थे वहां रह जाते थे और फिर गए और फिर सत्यभामा से मिले। तो सत्यभामा ने कहा हे गुरुदेव, उनके गुरु थे नारद, कि आपने जो मुझे दिया शिक्षा उसका तो फल मुझे मिला है, अब मैं गुरु दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि आपको जो सबसे अधिक प्रिय चीज है वो मुझे दे दो। तो सत्यभामा को या किसी भक्त को सबसे अधिक प्रिय चीज क्या है, उसका आईपॉड है या उसका कोई और चीज है, नहीं मोबाइल है। तो भक्त के लिए सबसे प्रिय है कि भगवान सबसे प्रिय है। तो जैसे ही सत्यभामा ने सोचा कि कृष्ण मुझे बहुत प्रिय है, तो नारद को कहा कि कृष्ण मुझे प्रिय है, आप इनको ले जाओ। तो वो ले कृष्ण को लाया, सत्यभामा ने लाया और जल वगैरह छिड़काया संकल्प करके, वो उनका हाथ कृष्ण का हाथ नारद के हाथ में पकड़ा दिया, कहते आप ले जाओ इनको। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते इस प्रकार से बेच देता है, कृष्ण रे बेचते पारे भक्त भक्ति रहते, तो बेच दिया। तो अभी अकेले सत्यभामा का कोई हक तो नहीं था, तो इतने सारे 16,007 रानियां बाकी थे आ गई दौड़ते हुए, हे सत्यभामा क्या कर रही हो तुम। तो फिर उन्होंने कहा मैं तो दे रही हूं इनको, नहीं कहते कि ये हमारे भी कृष्ण है। तो फिर नारद कहते ठीक है आप आपस में फाइट मत करो, एक उपाय है कि एक तराजू ले आओ और एक साइड में कृष्ण को रख देते हैं और जितने भी आप रानियां हैं और आप सोचती हो कि आपके आपको सबसे अधिक प्रिय कृष्ण है, तो आप अपना सारा जो ज्वेलरी है वो एक साइड में डालो तराजू में, और वो यदि कृष्ण से समान हो जाता है तो मैं वो सारा गोल्ड ले जाऊंगा, नारद कहते हैं, और आपके कृष्ण आपको वापस कर दूंगा, मुझे कृष्ण आवश्यक नहीं है। तो सारी रानियों ने पहले सत्यभामा ने अपना सब उतारा, रुक्मिणी सबने डाला और देखा कि कृष्ण ऊपर हो ही नहीं रहे। तो कृष्ण की कोई चीज से हम कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब कृष्ण को तो भक्ति से ही आप खरीद सकते हो, किसी और चीज से नहीं। तो इतना सब डाला तो कृष्ण ऊपर ही नहीं हो रहे थे। तो रुक्मिणी बहुत चलाक और मधुर रानी है, तो जो द्वारका वृंदावन में राधा रानी है वही द्वारका में रुक्मिणी देवी है। अलग मूड में। तो रुक्मिणी ने क्या किया, उनको पता था और वो तुलसी की सेवा करती थी और उसको तुलसी का ग्लोरीज पता था। जैसे उस दिन वो महाराज ने भागवतम क्लास में, नवगेंद्र महाराज ने तुलसी की महिमा सुनाई वृंदावन में कल भागवतम क्लास में, बहुत अच्छा। तो तुलसी, रुक्मिणी देवी ने एक पत्ता ले आई तुलसी का और उस पत्ते को कहा ये निकालो सारे गोल्ड को, और तुलसी का पत्ता लाई और उसके ऊपर कृष्ण लिख दिया और उसको रख दिया वहां। जैसे ही रखा तो कृष्ण तुरंत ऊपर हो जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये शक्ति है तुलसी महारानी या भगवान के नाम में, क्योंकि अभिन्नत्वात् नाम नामिना। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो भक्त है और जो भगवान है वो आपस में उनकी होड़ लगती है, कंपटीशन लगता है सेवा करने की। जैसे आप चैतन्य चरितामृत के आदि लीला को पढ़ते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि ये जो राधा रानी है जब कृष्ण को देखती है तो इतना आनंद महसूस होता है, तो कृष्ण को भी वहां बहुत अधिक आनंद महसूस होता है। तो कृष्ण का आनंद 10% बढ़ जाता है तो राधा रानी का सीधा 50% हो जाता है। तो कृष्ण फिर अरे कहते मुझसे ज्यादा क्यों ये आनंद मिल रहा है इसको, इस प्रकार से बढ़ता है और ये कॉम्पिटिशन चलती है और हर समय भगवान के भक्त ही विजय प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार जो निमाई पंडित का भी हृदय वैष्णव के प्रति सेवा या वैष्णव महिमा को वो बता रहे हैं अपने आचरण से। सेई प्रभु गौरांग सुंदर विश्वंबर गुण रूपे आछे नव द्वीपे रभितर। तो कहते कि वही कृष्ण जिनको उनके भक्त सकते हैं, वही कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में अवतरित हुए हैं, लेकिन अभी वो अपने आप को उन्होंने गुण रखा है, किसी के सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं। चिन्हते न पारे के हा प्रभु अपना जात बार लागिया हिला अवतार। तो महाप्रभु का अवतार जिस चीज के लिए हुआ था तो कोई भी व्यक्ति नवद्वीप में अभी पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन एक व्यक्ति ने पहचान लिया था, वो थे अद्वैत आचार्य। क्योंकि अद्वैत आचार्य को एक दिन भगवद गीता पढ़ रहे थे, तो जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भगवद गीता पढ़ते पढ़ते एक श्लोक जो 13वें अध्याय में है शायद था या 14वें अध्याय से जो समझ में ही नहीं आ रहा था, अपानी पादम है ना वो, कि भगवान को हाथ नहीं है फिर भी खाते हैं। तो फिर उनको जब वो भगवद गीता का वो श्लोक समझ में नहीं आया और ठीक से अर्थ नहीं निकल रहा था, उन्होंने कहा मैं अभी भोजन नहीं करूंगा जब तक ये मुझे समझ में नहीं आता। तो कितनी शिक्षा है, अद्वैत आचार्य भी भगवद गीता को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और इतना डिटर्मिनेशन, हम समझ में आना तो दूर ही रहता है हमें समझने की बात ही नहीं करते हम, कैसे तो बस कहा है 2 घंटा पढ़ना है, ठीक है पढ़ लेता हूँ 2 घंटा या फिर ये करके बताऊंगा कि देखो मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, 6 महीने में मैंने इतना पढ़ लिया या 1 साल में इतनी ग्रंथ पढ़ लिए है। ये नहीं, तो वहां अद्वैत आचार्य भगवद गीता पढ़ते थे रोज और जो ठीक से हर एक श्लोक को समझना चाहते थे, तो एक दिन समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा प्रसाद नहीं लूंगा आज। तो लॉर्ड चैतन्य विश्वंबर वो उनके सपने में आते हैं, उनको उठाते हैं, उठो वे भोजन करो फिर तुम्हें समझ में आएगा श्लोक। तो सामने रहकर उनको भोजन कराते हैं और वो समझ में आता है। तो इस प्रकार जो नवद्वीप में अवतरित हुए थे गौरांग महाप्रभु, तो लेकिन नवद्वीप में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको समझ पा रहा था या जिसने ये जान लिया था कि श्री कृष्ण साक्षात निमाई पंडित है। कृष्ण बजी 12,000 अच्छे अभिलाष, एक सब ये बहुत महत्वपूर्ण प्यार है, याद हो जाना चाहिए आपको। कृष्ण भजि बार जार आछे अभिलाष, कृष्ण भजि बार जार आछे अभिलाष, से भजुक कृष्ण र मंगल प्रिय दास। तो ये कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर, कृष्ण भजि बार जार आछे अभिलाष, जिसके हृदय में सही में इच्छा है कृष्ण का भक्ति करने की या कृष्ण का भजन करने की, सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, से भजुक कृष्ण र मंगल प्रिय दास, उस व्यक्ति को कृष्ण के जो प्रिय दास है, जो मंगल है, जिनका नाम लेने पात्र से संसार पवित्र हो जाता है, उनका भजन करना चाहिए। सबारे शिखाय गौर चंद्र भगवाने वैष्णवेर सेवा प्रभु करिया अपने। इस प्रकार से महाप्रभु जो निमाय पंडित है, आप खुद वैष्णव की सेवा कैसे करनी चाहिए उसकी शिक्षा प्रदान करते हैं। साजी बहे दूती बजा नहीं करे संभ्रमे वैष्णव गण हाथ आसी धरे। तो इनको जब इस प्रकार की सेवाएं उन्होंने की थी, लज्जा को छोड़कर किसी के कपड़े सुखाते थे, किसी के कपड़े निचोड़ देते थे, किसी का किसी को गंगा का मिट्टी दे देते थे, किसी के फूलों का जो टोकरी है या पूजा का टोकरी उनके घर में जाके छोड़ते थे। तो ये इतने पंडित थे, मतलब नवदीप के सबसे बड़े प्रोफेसर थे, लेकिन अभी उनमें पूरा परिवर्तन आ गया था जब उन्होंने कृष्ण भक्ति को स्वीकारा था, भक्तों का संग किया था और हरि नाम का उच्चारण किया था।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे।
देखी विश्वम्बरे विनय भक्तगण आकय तब आशीर्वाद करे सर्वक्षण। तो इस प्रकार विश्वम्बर का विनम्रता देखकर सारे भक्त उनको बिना कपटता के आशीर्वाद दे रहे थे। एक एक कपटमय कृपा और एक अकपट कृपा होती है, सकपट और निष्कपट। तो आशीर्वाद क्या देते हैं, बहुत लंबा आशीर्वाद देते हैं। भज कृष्ण स्मर कृष्ण सुन कृष्ण नाम कृष्ण हो सवार जीवन धन प्राण। आप देखो वृंदावन दास ठाकुर ने एक प्यार में कितने कृष्ण नाम दिए हैं। कहते कि कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का स्मरण करो, सुनना है तो कृष्ण नाम को सुनो और कृष्ण हो और अपने जीवन के जो लक्ष्य है या प्राण है या धन है वो कृष्ण को बनाओ। बलह बलह कृष्ण हो कृष्ण दास तुम्हारा हृदय कृष्ण हो न प्रकाश। तो उन्होंने कहा कि आप कृष्ण कृष्ण बोलो और कृष्ण के दास ही बनो और तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रकाशित हो जाए। तो ये कौन आशीर्वाद दे रहे हैं, नवदीप के सारे जो वैष्णवगण है, निमाय पंडित वैष्णव की सेवा में लगे थे। कृष्ण भई आर नहे स्पुरुक तुमार तुमा है ते दुख जाओ आमा सबाकार। और कहने लगे कि आपको केवल कृष्ण के अलावा कोई और चीज स्पुरित नहीं होनी चाहिए। हम तो स्पुरित मतलब उच्चारित नहीं होनी चाहिए या स्मरण नहीं होना चाहिए केवल कृष्ण के अलावा। अब इस प्रकार से हमारे हम सबका जो दुख है वो खत्म हो जाएगा। जे सब अधम लोक कीर्तन रे हसे तुम है ते तहारा डूबुक कृष्ण रसे। तो उन्होंने कहा कि जितने भी जो पाषंडी लोग हैं और जो अधम है जो कीर्तन की हंसी उड़ाते हैं, तो जैसे आजकल भी हम हरि नाम में जाते हैं तो कई बार लोग नकल करके दिखाते हैं या हंसते हैं, विदेशों में अंडे या फिर टमाटर फेंक के मारते थे भक्तों के ऊपर। तो ऐसे कहा गया, लंदन में एक भक्त ने कहा कि वो खुद टमाटर फेंक के मारता था लेकिन बाकी एक साल के बाद वो खुद भक्त बन गया जो टमाटर फेंक के मारता था हरि नाम के ऊपर। हाँ तो वो इस प्रकार से देखो। हाँ तो महाप्रभु की एक कृपा है। तो ये वैष्णव कह रहे हैं कि जो लोग कीर्तन की हंसी उड़ाते हैं तो वे लोग आपके द्वारा कृष्ण या कीर्तन रस में खुद ही डूब जाए, जैसे टमाटर फेंकने वाला भक्त डूब गया भक्त कहाँ गया। जेन तुम्हें शास्त्र सब जिनीला संसार तेन कृष्ण भजि कर पाषंडी समार। तो उन्होंने कहा जिस प्रकार तुम जब निमाय पंडित के रूप में अपने कई कार्यकलाप किए तो तुम जब शास्त्रार्थ करने के लिए बहुत एक्सपर्ट थे, तो वैसे ही तुम क्या करो, अभी पाखंडियों का ढोंगियों का संहार कर दो कृष्ण कीर्तन के द्वारा। तुम्हारा प्रसाद जन आमारा सकल सुखे कृष्ण गाये नाची है या विवाल। तो उन्होंने कहा कि आपकी कृपा से हम सब लोग कृष्ण कीर्तन के रस से विवल हो जाएंगे और सुख से कृष्ण का नाम लेते हुए गाते और नाचते रहेंगे। हस्त दिया प्रभुर अंगे ते भक्तगण, आशीर्वाद करे दुख करे निवेदन। तो महाप्रभु के शरीर पे हाथ लगाते हुए सब भक्तों ने इस प्रकार के आशीर्वाद दिए और अपना दुख बताया। यही नवद्वीपे बाप जत अध्यापक, कृष्ण भक्ति बाखाने ते सबे हयपक। तो उन्होंने कहा, दुख क्या बताया उन्होंने भक्तों ने, पहले तो आशीर्वाद दिया और दूसरी अभी अपने हृदय का दुख बता रहे वैष्णवगण। तो वो कहते हैं कि इस नवद्वीप में जितने भी अध्यापक हैं, जो टीचर है या प्रोफेसर है, वो कृष्ण भक्ति की जब बात आती है, कृष्ण भक्ति का वर्णन करने की बात आती है, तो वो बक बन जाते हैं। बगुला होता है ना, वो शांत बैठता है, लेकिन ध्यान उसका मछली के ऊपर होता है। कहते नवदीप के सारे जो शिक्षक है उनकी ऐसी स्थिति है, जहां भी कृष्ण कथा की चर्चा आती है तो उनका मुंह खुलता नहीं है, मौन मौन धारण कर। हमारी भी स्थिति वैसी है। जैसे एक भक्त राधा कुंड प्रभु थे इस्कॉन में, जिन्होंने शरीर छोड़ा 2 साल 1.5 साल पहले, तो वो जब भी आते थे, जहां भी मंदिर जहां भी जाते थे किसी मंदिर में, तो किसी भी भक्त के पास जाते थे और कहते थे मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, कृष्ण के बारे में बोलो। तो ये प्रश्न सुनते ही भक्त खत्म हो जाता था, उसके मुंह से कृष्ण के बारे में एक चीज भी नहीं निकलती थी, बल्कि वो भक्त 10 साल से है, 5 साल से है, 20 साल से है, लेकिन कृष्ण के बारे में उसके मुंह से प्रॉपरली नहीं निकलता था। हाँ, क्योंकि प्राण अच्छे जार से हेतु प्रचार। प्राण क्या होना चाहिए भक्त के अंदर? भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के कार्यकलापों के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। हाँ, तो ये भक्त का जीवन है। तो उन्होंने देखा कि इस्कॉन में भी जब किसी मंदिर में जाते हैं, और उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कई भक्तों के सामने, वृंदावन मंदिर के समाधि के आसपास कई ब्रह्मचारी इधर उधर बैठे थे, ये सीधा जाते थे और कहते थे प्रभु जी मुझे कृष्ण के बारे में बताओ। तो कितना कठिन हमें लगता है, हम किसी और चीज के बारे में बोल सकते हैं, कंप्यूटर्स के बारे में बोल सकते हैं और भौतिक चर्चाएं कई चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमें कोई वैष्णव आता है, भक्त आता है कि प्रभु जी प्लीज आज पूरे दिन में बहुत इतना घूम रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, कुछ ना पढ़ा है ना सुना है, आप कुछ मुझे कृष्ण के बारे में सुनाओ, तो कहता मैं योग्य नहीं हूँ। शॉर्टकट या भाग जाता है आंसर देके कि मैं योग्य थोड़े हूँ, आप तो सीनियर है, या फिर कई ऐसे बहाने बनाते हैं। तो लेकिन भक्तों का लक्षण क्या है? कृष्ण कहते भगवद गीता में, मच्चित्ता मदगत्राणा उदयंता परस्परम। तो इस प्रकार से कृष्ण वहां थ्योरी बता रहे हैं और प्रैक्टिकल चैतन्य चरितामृत में या श्रीमद् भागवतम में हुआ है। तो आचार्यगण कहते हैं कि भगवद गीता जो दर्शन है और भगवद गीता के जो उदाहरण है वो कहाँ मिलते हैं हमें? भागवतम में मिलते हैं। तो वहां वर्णन आता है इन सब चीजों का, कि सन्यासी की तपस्वी की वा ज्ञानी जात, बड़ा बड़ा यही नव द्वीपे अच्छे कत। कि इतना ही नहीं, केवल छोटे मोटे अध्यापक नहीं, अभी आध्यात्मवादियों की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने सारे जगत को त्याग दिया है, सन्यासीगण, तपस्वीगण, ज्ञानीगण, ये जो बड़े बड़े दिग्गज थे नवद्वीप में। कहना बाखाने बाप कृष्ण र कीर्तन, नाही करे व्याख्या आरा निंदे सर्वक्षण। एक कीर्तन होता है, हाँ दो कीर्तन है, एक है गुण कीर्तन और एक है दोष कीर्तन। तो कहते कि ये बड़े बड़े तपस्वी साधु ये क्या करते थे, कहना बाखाने बाप, ये सब लोग कृष्ण के कीर्तन का, कृष्ण की कथा का व्याख्या नहीं करते थे, लेकिन एक चीज वो हमेशा करते थे, निंदा जरूर करते थे। जते का पापिष्ट श्रोता से ही वाक्य धरे, तृण ज्ञान केह आमा सबा रेना करे। तो इस प्रकार से ये भक्त कहते हैं कि जितने भी पापी श्रोतागण हैं, तो उनके स्वर में ही स्वर मिलाते थे, मतलब वो लोग निंदा की चर्चा करते थे तो सुनने वाले भी निंदा ही करते थे। तो वो लोग हम सबको एक तिनके के समान समझते थे, वैष्णव लोग है ही क्या, इनको कोई निकृष्ट है ये लोग, एक तिनको के कोई हम किसी घास के तिनके को हम कोई आदर नहीं देते हैं या उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर पाव देने से पहले नहीं सोचते। तो उसी प्रकार से ये लोग जो निंदा करने वाले ऐसे तपस्वियों से सुनते थे, तो जो श्रोतागण है वो भी पापी हैं और वो भी क्या फिर रिपीट करते थे, निंदा को ही रिपीट करते थे। संतापे पड़े बाध्य सभाकार कोथावना सुने कृष्ण कीर्तन प्रचार। तो उन्होंने कहा कि हमें कृष्ण कीर्तन के प्रचार कहा भी सुनाई नहीं पड़ता था। एकने प्रसन्न कृष्ण है लास बारे ए पते प्रविष्ट करे दिले न तुम्हारे। तो सारे वैष्णवगण फिर कहने लगे कि हे निमाय, तो ये कृष्ण ने आपको इस कारण से भेजा है यहाँ, इस वैष्णव संप्रदाय में आपको इसी कारण से भगवान ने आपको अवतरित किया है। तो महते पाए बेक पाषण निरक्षाय मने ते अमरा यहाँ बुजनु निच्छाय। तो वो वैष्णव कहने लगे कि आप अभी आए हो और आप आने के कारण जो पाषंडी लोग हैं, जो वैष्णव की निंदा करते हैं या वैष्णव धर्म को नहीं स्वीकार करते, ये सब लोगों का क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा और हम ये हमारे में निश्चित रूप से जानते हैं। चिराजीवे हो तुम्हें लह कृष्ण नाम तो महते व्यक्त हो कृष्ण गुण ग्राम। तो वो सारे वैष्णव इस बात को कहने लगे कि आप चिरंजीवी रहो और कृष्ण के गुणों का गान करते रहो और कृष्ण के गुणों का सारे संसार में प्रचार करते रहो। भक्त आशीर्वाद प्रभु श्रे करे लाए भक्त आशीर्वाद से कृष्ण ते भक्ति है। हाँ, तो भक्त आशीर्वाद, तो चैतन्य महाप्रभु ने उन सारे भक्तों से इस आशीर्वाद को स्वीकार किया और आपने सर में एक प्रकार से धारण किया और ये शिक्षा दे कि भक्त आशीर्वाद से कृष्ण के भक्ति है। क्योंकि भक्ति रसामृत में आता है वर्णन कि जो भक्ति है वो सुदुर्लभा है। छह जो लक्षण है शुद्ध भक्ति के, छह लक्षण, उनमें से एक लक्षण क्या है, सुदुर्लभा। तो भक्ति दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभा मतलब बहुत अधिक रेयर है। तो कोई व्यक्ति कृष्ण के पास कोई भी चीज मांगने जाए तो कृष्ण जल्दी दे देते हैं, लेकिन जैसे कोई भक्ति का बात बोलता है तो कृष्ण कहते लाइन दूसरी लाइन में लगो, इधर इधर लगो, जैसे वेट करो। तो इस प्रकार से यदि ये भक्ति चाहिए तो वो कहते कि भक्तों के आशीर्वाद से, क्योंकि कृष्ण के पास नहीं है भक्ति। हाँ, भक्ति तो भक्त करता है, इसलिए भागवत में आता है भक्ति तो भगवत भक्ता संगे न परिजायते, कि जो भक्ति है वो भक्तों के संग से हम उनसे ले लेते हैं। हाँ, तो किसी वैष्णव को हम महान वैष्णव को जब खुश करते हैं या प्रसन्न करते हैं अपनी सेवाओं के द्वारा, तो वो वैष्णव क्या करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। जैसे नारद दासी पुत्र थे और वो वैष्णव जनों की सेवा की उन्होंने, तो उन वैष्णव ने उनके हृदय में भक्ति को संचार कर दिया। तो इस प्रकार से भक्ति भगवान का धन नहीं है, भक्ति तो भक्तों का धन है और वो भक्तों के पास होता है। और इसीलिए इस भक्ति धन को बांटने के लिए कृष्ण भक्त के रूप में अवतरित होते हैं, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, और तभी वो इसका वितरण कर पाए, नहीं तो इससे पहले उन्होंने ऐसा वितरण नहीं किया है कृष्ण भक्ति का। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है एक भक्त के जीवन में दूसरे भक्त का होना। तो वो कहते हैं कि भक्त आशीर्वाद है, कि भक्त के आशीर्वाद से ही भगवान में भक्ति का उदय होता है। तो आखिरी प्यार पढ़ते हैं, सुनिया भक्त दुख प्रभु विश्वंबर प्रकाश है ते चित्त अल सत्व। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया कि ये सारे भक्तों का दुख उनसे रहा नहीं गया, और चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय में सोचा कि मेरे सारे भक्त अभी बहुत दुखी हैं, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु आगे चलकर अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं और भक्तों के साथ कई प्रकार की लीलाएं करते हैं और कई प्रकार शिक्षा देते हैं। तो आज से हम यही सीखते हैं चैतन्य महाप्रभु के इस आचरण से कि एक भक्त के लिए हाँ उसके जीवन में बाकी भक्तों का होना कितना महत्वपूर्ण है, हाँ, और उनकी जो सेवा है वैष्णव सेवा का महानता महाप्रभु ने बोला है, श्री चैतन्य बाग बाग के, श्री वृंदावन दास ठाकुर के।